Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, Brahmananda Valli, presented by Swami Sri Vishwatmanandaji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Harihi Om. Harihi यदियं कारुण्यं पतति गतपुण्येऽपि मनुजे तथा वाणी बिन्दु पिबति भवसिन्धुं घटजनी स्मरामि प्रातस्तं समविषमभेदैकदलनम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः हरि ओम् नारायण 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 नारायण
तैत्तिरीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली के सातवें अनुवाक में कल ये प्रसंग था कि ब्रह्म तो सबके लिए सम है, ये ठीक है, लेकिन विद्या और अविद्या के अनुसार वही ब्रह्म दो प्रकार का हो जाता है। जो उस ब्रह्म को अपना आत्मा जानता है वो अभय पद पर प्रतिष्ठित हो जाता है, और जो उसे अपने से भिन्न जानता है उसे मृत्यु का भय लगा रहता है, और इसलिए वो जो उसकी अविद्या है वही भय का कारण बनती है। श्री सुरेश्वराचार्य जी महाराज कहते हैं कि ये ब्रह्म क्या अद्भुत है कि स्वयं अभय है, दूसरों को अभय कर देता है, लेकिन अविद्या के कारण वही अज्ञानियों के लिए भय का कारण भी होता है। अगर बारीकी से देखा जाए तो धर्म में जो प्रवृत्ति होती है वो 5% लोगों को छोड़ दो, 95% लोगों की प्रवृत्ति भय के कारण होती है कि ऐसा करेंगे तो नरक जाना पड़ेगा, ऐसा करेंगे तो संसार में दुख भोगना पड़ेगा। अगर ये भय ना हो तो फिर देखो दुनिया में क्या गड़बड़ सड़बड़ होती है। तो भय धर्म का तो हेतु है लेकिन मोक्ष का हेतु नहीं है। हमारे महाराज श्री कहते थे कि ब्रह्म ज्ञेय है, ब्रह्म को जाना जाता है, और ब्रह्म की यदि उपासना करनी हो तो उसको ईश्वर मानना चाहिए, माने माया उपाधि के सहित होकर के वो उपास्य बनता है। शुद्ध ब्रह्म ज्ञेय है और मायोपाधिक ब्रह्म उपास्य है। और ये जो अवतार हैं, उपासना इनकी ईश्वर रूप से होती है, लेकिन जो मधुर रस के प्रेमी हैं, जो ऐश्वर्य भक्ति से ऊपर उठ जाते हैं, उनके लिए तो वो स्वामी है, सेवक है, सखा है, बेटा है, माँ है, बाप है, पति है, पत्नी है। मतलब संबंध भक्ति जो है वो मधुर रस में आती है। तो अवतार ईश्वर जो है वो प्रेय है, और निर्गुण ईश्वर जो है, निराकार ईश्वर जो है वो उपास्य है, और निर्गुण निराकार जो तत्व है वो ज्ञेय है। अब अपनी अपनी रुचि का एनालिसिस कर लेना चाहिए, जैसी जिसकी रुचि हो उसके अनुसार शास्त्र उसे बताता है। तो नारद जी ने कहा ना, पूजा दिशु अनुराग भक्ति, वो तो इति गर्गा। गर्गाचार्य ऐसा कहते हैं कि पूजा आदि में अनुराग होना ही भक्ति है। अब जिनको कर्मकांड का अभ्यास ज्यादा होता है बचपन से ही, उन्हें जब तक पुष्प आदि न चढ़ाओ तब तक संतोष ही नहीं होता है। कितनी भी बढ़िया स्तुति बोल लो, संतोष नहीं होगा जब तक कोई क्रिया रूप उनके जीवन में न हो। तो अपनी अपनी रुचि है, शास्त्र सबके लिए है, सबको एक डंडे से नहीं हाँकता है कि तुम ऐसे ही करो ना। शास्त्र व्यापकम न तो कारकम, ये भी शंकराचार्य भगवान का वाक्य है। शास्त्र तो व्यापक है, बता देता है, हाथ पकड़ करके किसी से ये नहीं कहता है कि तुम ऐसा करो। अब जैसी जिसकी रुचि है वो उसमें वैसी उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। तो प्रश्न शिष्य ने यह किया था कि ब्रह्म तो समान है, तो वो जैसा ज्ञानी को मिलना चाहिए ऐसा ही अज्ञानी को भी मिलना चाहिए, तो ब्रह्म ज्ञान की फिर क्या जरूरत है जब उसको मिलना ही है। तो इसका जवाब यह दिया कि यदि ज्ञान पूर्वक ब्रह्म को पकड़ोगे, विद्या से ब्रह्म को पकड़ोगे, तब तो वो अभय का हेतु है, और अगर अविद्या पूर्वक उसको पकड़ोगे, भेद बुद्धि से उसको पकड़ोगे, तो वो भय का हेतु है, फिर ऑटोमेटिक ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी ना। पहले तो आपने जैसा किया है, जैसा माना है, उसके अनुसार फल मिलेगा, उसके बाद फिर मनुष्य योनि मिले न मिले, फिर मनुष्य योनि जब कभी मिलेगी तो फिर पुरुषार्थ करेंगे उसकी प्राप्ति के लिए, और फिर कोई अंतराय आ गया तो फिर चलो 84 के चक्कर में। तो बोले कि प्रतिष्ठां विन्दते अथ सो अभयम गतः, जो इसमें आत्म ब्रह्मात्मैक्य में प्रतिष्ठित हो जाता है वो तो अभय को प्राप्त होता है। और यदा ही एवैष सर्वैस्मिन उदरम अंतरम कुरते अथ तस्य भयम भवति, थोड़ा सा भी जो इसमें अंतर करता है आत्मा और ब्रह्म में नारायण, उसको भय की प्राप्ति होती है। इसके बाद जो आठवां अनुवाक है उसमें दो प्रसंग हैं। एक प्रसंग तो आप सुन चुके हैं, सैषा आनंदस्य मीमांसा, आनंद की मीमांसा है। तो मनुष्य के आनंद से बड़ा आनंद कर्म देवता का है, कर्म देवता से बड़ा आनंद कर्म गंधर्व का है, फिर देव गंधर्व का है, और फिर देवता का है, फिर अजान देवता का है, ऐसे करते 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 और ब्रह्मा जी का आनंद जो है वो सबसे बड़ा है ना। अब इस प्रकरण को सुनकर के आनंदमय कोश का तो वर्णन हो गया, लेकिन इस प्रकरण को सुन करके मन में ये आता है कि हम क्यों न ब्रह्मा जी बन जाएं। इतना बड़ा जब उसको आनंद आता है तो हम ब्रह्मा जी क्यों न बन जाएं, इंद्र क्यों न बन जाएं, प्रजापति क्यों न बन जाएं। तो अगर मन में ये आता है तो अभी कर्तृत्व भोक्तृत्व की ग्रंथि का भेदन नहीं हुआ। कुछ करने का यदि मन में संकल्प होता है और करके कुछ पाने का मन में संकल्प होता है तो कर्तापन भी बना हुआ है और भोक्तापन भी बना हुआ है। अगर आप ब्रह्म हैं, अगर आप हैं तो माने अगर आप ये स्वीकार करते हैं कि मैं ब्रह्म हूं तो आपको सब कुछ पहले से ही प्राप्त है। क्या करोगे और क्या प्राप्त करोगे, ये तो जीव कोश है जो कुल 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 करता रहता है, अभी हमारे पास ये नहीं है, अभी हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है तो फिर ये करो, ये नहीं है तो फिर ये करो। तो ये चार श्लोक तो सैषा आनंदस्य मीमांसा के हैं आठवें अनुवाद में, और पांचवा मंत्र जो है वो महावाक्य का है। चार तो मैंने कर दिए, पांचवा ये है, स यश्चायम पुरुषे यच असौ आदित्य स एकः, स य एवं विद अस्मात् लोकात् प्रेत्य एवं अन्नमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति, एतम् प्राणमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति, एतम् मनोमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति, एतम् विज्ञानमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति, एतम् आनंदमयम् आत्मानम् उपसंक्रामति, तदप्येषो श्लोको भवति। कहते हैं कि ब्रह्मा जी का जो आनंद है वो मनुष्य के आनंद से अनंत गुना है। आपको बताया था 10^21। अगर मनुष्य का आनंद 10^1 है तो ब्रह्मा जी का आनंद 10^21 है। 21 तक गिनती पहुंचती नहीं है, माने 22 अंक हो गए ना, और 20 अंक पे अपनी गिनती खत्म हो जाती है, महासंक पे जाकर खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब है अनंत आनंद है। तो कहते हैं कि चलो ब्रह्मा जी बने, इस जन्म में न बने तो कोई ऐसा कर्म करो कि अगले जन्म में ब्रह्मा जी बन जाए, और नहीं तो देवता तो बन जाए, मनुष्य से तो ज्यादा ही आनंद मिलेगा। तो कहते हैं भाई तुम ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा को क्यों नहीं पकड़ते, आनंदमय कोश हुआ ये तो ब्रह्मा जी के आनंद तक तो सब आनंदमय कोश है, लेकिन जो ब्रह्मानंद जिसको बोलते हैं उसको क्यों नहीं पकड़ते, ब्रह्मा जी के आनंद पर ही क्यों रुक जाते हो। तो बोले उससे भी अगर ज्यादा हो तो उसे बता दो। तो बोले बता तो दें लेकिन कर्तापना छोड़ना पड़ेगा। कैसे छूटे, तो उसी का ये महावाक्य बता रहे हैं कि महावाक्य का विचार करो। जब हम अंतःकरण को अपनी उपाधि मान लेते हैं, बुद्धि को उपाधि मान लेते हैं, मन को उपाधि मान लेते हैं, चित्त को उपाधि मान लेते हैं, तो हम परिच्छिन्न हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं। जैसे घड़े के भीतर आकाश आ गया तो वो जो आकाश है वो तो असीम है, अब वो घड़े के भीतर मालूम पड़ने के कारण घड़ा उसकी उपाधि बनकर उसे छोटा बना रहा है। ऐसे ही ये जो अंतःकरण शरीर है इसकी उपाधि से वो अनंत ब्रह्म जो है वो छोटा सा जीव मालूम पड़ता है, और फिर वो कर्ता भोक्ता बनता है। अब वो सोच रहा है मैं ब्रह्मा जी बन जाऊं, तो बोले ब्रह्मा जी बनने के बजाय आप ब्रह्म बनो। बोले कैसे ब्रह्म बने, कि उपाधि का ख्याल छोड़ दो, आकाश को पकड़ो, घड़े की बाउंड्रीज का ख्याल छोड़ो, आकाश को पकड़ो, घड़े के भीतर जो आकाश है वो वही आकाश है और उतना ही शुद्ध आकाश है जितना बाहर वाला आकाश है। तो स यह च अयम पुरुषे यच असौ आदित्य स एकः, इस पुरुष के भीतर जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, वही उस आदित्य में है। आदित्य माने सूर्य होता है, लेकिन सूर्य भी होता है, हिरण्यगर्भ भी होता है। तो हिरण्यगर्भ का आनंद जो है सबसे बड़ा आनंद बताया ना, और मनुष्य का आनंद सबसे छोटा बताया। तो मनुष्य का आनंद माने अंतःकरण में बैठ गए, और ब्रह्मा जी का या हिरण्यगर्भ का आनंद जो है उसकी उपाधि धारण करो तो वो तो आपके बस की नहीं, चाहे जितने जन्म ले लो हिरण्यगर्भ नहीं हो सकते हो। हिरण्यगर्भ तो परमात्मा जब सृष्टि करता है तो स्वयं हिरण्यगर्भ बन करके उपस्थित होता है, वो परमात्मा का ही ईश्वर रूप है। तो आपको ईश्वर की उपाधि नहीं मालूम ग्रहण करनी है, अपनी उपाधि का परित्याग करना है। तो कैसे परित्याग करें कि उस बड़ी उपाधि को पकड़ने की कोशिश मत करो, अपनी छोटी उपाधि छोड़ दो। तो उपहित उपहित दोनों में एक है। घड़े के भीतर जो आकाश है वो घड़े से उपहित है, उपहित माने घिरा हुआ, और मकान के भीतर जो आकाश है वो मकान से उपहित है। मकान बड़ा है तो इसलिए वो बड़ा मालूम पड़ता है, घड़ा छोटा है तो वो छोटा मालूम पड़ता है आकाश, लेकिन आकाश तो न छोटा है न बड़ा है। तो उपहित पर दृष्टि यदि रखें तो उपाधि का परित्याग हो जाता है। तो ये सोचो कि इस मनुष्य के भीतर जो चैतन्य है, जो सच्चिदानंद बैठा हुआ है, वही तो हिरण्यगर्भ के अंदर भी सच्चिदानंद बैठा हुआ है। दूसरा परमात्मा कहां से आएगा? परमात्मा तो एक ही है। जीव अनेक एक श्रीकंता, मुधाभेद यद्यप कृत माया। कहते हैं कि जीव तो अनेक हैं, और जहां तो अनेकता की जहां भ्रांति हो रही है कि मैं और हूं, हिरण्यगर्भ और है, ब्रह्मा जी और हैं, देवता और हैं, तो ये जीव अनेक और एक श्रीकंता, ईश्वर जो है वो एक है, माने जो सब में ओतप्रोत है वो तो है एक, और जो अभिमानी है वो है अनेक। अच्छा, ब्रह्मा जी को छोड़ दो, हम और आप एक हैं कि अनेक हैं? बोले शरीर की दृष्टि से तो अनेक हैं। तो ये तो हमें प्रत्यक्ष प्रमाण से ही मालूम पड़ रहा है कि अनेक हैं, तो उसमें शास्त्र की क्या जरूरत है? अनेकता की सिद्धि में शास्त्र की कोई जरूरत नहीं है, एकता की सिद्धि में शास्त्र की जरूरत है। शास्त्र बताएगा कि भाई ये इस शरीर का जो अभिमानी है और सामने वाले शरीर का जो अभिमानी है, माने मैं ये हूं, मैं ये मानता हूं, आप ये मानते हो कि आप ये हैं, आपका अभिमान अलग है, मेरा अभिमान अलग है, इसलिए भेद मालूम पड़ता है। तो अभिमानी को यदि छोड़ दें और अभिमान जिसका कर रहा है उस उपाधि को छोड़ दें, तो जो दोनों में उपहित है वो तो एक ही है ना। अच्छा, एक घड़े में शराब भरी हुई है और एक घड़े में गंगा जल भरा हुआ है, दोनों में सूर्य की परछाई पड़ रही है। आप से कहा जाए कि इन दोनों परछाइयों में से आप एक छांट लो, कौन सी छांटोगे? तो यद्यपि हमको मालूम है कि परछाई तो परछाई है, कुछ चीज थोड़ा ही है, लेकिन फिर भी गंगाजल में महत्व बुद्धि होने के कारण हम गंगाजल वाली परछाई को उसी को ग्रहण करेंगे। तो अंतःकरण सबके मिथ्या है, ये बात ठीक है, लेकिन अंतःकरण मिथ्या होने पर भी जो शुद्ध अंतःकरण है वही श्रेष्ठ माना जाता है, जो उत्कृष्ट अंतःकरण है उसी को उत्कृष्ट माना जाता है। बोले ब्रह्मा जी भी तो जीव है, तो चींटी भी जीव है, तो जीव चींटी बनने की कोशिश करो, फिर क्यों ब्रह्मा जी बनने की क्यों कोशिश करते? ब्रह्मा जी की उपाधि श्रेष्ठ है। हमारे स्वामी निश्चलानंद जी महाराज कहते हैं, शंकराचार्य, कि श्री कृष्ण भी ब्रह्म है और गधा भी ब्रह्म है, तो गधे का ध्यान करो। ऐसे थोड़ी ध्यान, जहां उत्कृष्टता आरोपित है उसी का ध्यान किया जाता है। संत महात्माओं का ध्यान किया जाता है, अवतारों का ध्यान किया जाता है, ईश्वर का ध्यान किया जाता है। जिसकी उपाधि जितनी श्रेष्ठ होती जाती है वही ध्येय हो जाता है। तो ये ज्ञान है कि दोनों एक हैं, और ये व्यवहार है कि वो उपाधि श्रेष्ठ है और ये उपाधि कनिष्ठ है। तो उपाधि में एकता नहीं करनी है, आप ब्रह्मा जी नहीं हो सकते हो। ब्रह्मा ब्रह्मा बने रहे, मनुष्य मनुष्य बना रहे, लेकिन दोनों में परमात्मा एक ही है, ब्रह्म एक ही है। ये यदि समझ में आ जाए तो हम ब्रह्मा बनने की कोशिश नहीं करेंगे, हम तो ब्रह्म हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। तो यही महावाक्य है नारायण, स यह च अयम पुरुषे, ये जो इस पुरुष में है, यह च असौ आदित्य, और ये जो आदित्य में है माने हिरण्यगर्भ में है, स एकः, वह एक ही है। ये हो गया महावाक्य। स यह एवं विद, जो इसको इस प्रकार से जानता है, उसको इस रूप में जो जानता है, अस्मात् लोकात् प्रेत्य, वो इस लोक से मर करके एतम अन्नमयम आत्मानम उपसंक्रामति, वो अन्नमय पुरुष को प्राप्त होता है। तो जब अन्नमय कोष का जिक्र चल रहा था तो बताया था कि एक है अन्नमय कोष और एक है अन्नमय पुरुष। तो अन्नमय कोष तो ये शरीर है छोटा सा, और ये पंच महाभूत जो है ये व्यापक अन्नमय कोष है। इसका अभिमानी मैं इस समय जो हूं जागृत अवस्था में, और पंचभूतों का अभिमानी कौन है? पंचभूतों को जो अपना शरीर मानता है उसी को विराट बोलते हैं। तो जो ऐसा जानता है कि जो ब्रह्मा जी में है सोई यहां है, जो यहां है सोई ब्रह्मा जी में है, तो फिर जो विश्वात्मानंद है वही विराट है। अब विश्वात्मानंद को यदि मैं अभिमानी मान लूंगा तो विराट के साथ एकता नहीं हो सकती है। अपना विश्वात्मापना छोड़ दो, विश्वात्मानंदपना छोड़ दो, माने इसे मिथ्या समझो, तो आप विराट ही हो, मैं विराट हूं। ये हमारे महात्माओं में जो नाम रखे जाते हैं ना संन्यास के नाम, तो या तो वो निषेध परक होते हैं और या तो वो व्यापकता का बोध कराने वाले होते हैं। उसका मतलब ही है कि बार 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 आपको जब नाम से पुकारा जाता है, चाहे खुद पुकारो चाहे दूसरा पुकारे, तो ये इस शरीर में जो अभिमान है वो कटता है। तो भाष्यकार ने अस्मात् लोकात् प्रेत्य इसका बड़ा अच्छा अर्थ किया है। वो कहते हैं मर करके अन्नमय कोष अन्नमय पुरुष को प्राप्त होता है, तो ये तो मरने के बाद की विद्या हो गई। तो बोले नहीं, लोकात् माने इस शरीर और ये पंचभूतात्मक शरीर व्यापक, इससे मर करके माने इनकी उपेक्षा करके, इनसे वैराग्य करके यही मरना है। मान लो किसी से कोई पाप हो जाए, जघन्य पाप हो जाए, तो कहते ना अरे हमारे लिए तो मर गया, तो मरे बराबर के लिए प्रेत्य है। तो सृष्टि में जब वैराग्य हो जाता है तब वो मरे बराबर ही हो जाता है। अस्मात् लोकात् प्रेत्य एवं अन्नमयम् आत्मानम् उपसंक्रमति। अब जरा ध्यान कर लो कैसे ये ब्रह्मानंद वल्ली शुरू हुई थी। बोले उस परमात्मा से अथवा इस आत्मा से ये आकाश पैदा हुआ, आकाश से वायु हुई, वायु से अग्नि हुई, अग्नि से जल हुआ, जल से पृथ्वी हुई, पृथ्वी से औषधियां हुई, औषधियों से फिर अन्न खा करके पुरुष हुआ और ये अन्नमय कोष बन गया। यहां से शुरू हुए थे। अब इसका व्यापक करोगे तो पंचभूतों तक आ जाओगे। बस एक शरीर में अन्नमय कोष पंचभूतों का विकार है और सब में समष्टि में पंचभूत को ही अन्नमय कोष कहते हैं। तो जो ऐसा जानता है कि जो हिरण्यगर्भ में आत्मा है सोई इस शरीर में आत्मा है, तो वो इस शरीर अकेले एक शरीर को अपना स्वरूप नहीं मानता है, वो पूरे पंचभूतों को अपना शरीर मानता है। ये पहली स्टेज है। इसके बाद में फिर पंचभूतों से भी मर जाओ नारायण, तो फिर समझो कि पंचभूत जो इनमें क्रिया हो रही है प्राणमय कोष, तो एक शरीर में सांस चल रही है, क्रिया शक्ति जो है इसको प्राणमय कोष बोलते हैं, और पूरे संसार में जो क्रिया हो रही है वो भी प्राणमय कोष है। तो जब पंचभूतों को हमने अपना शरीर मान लिया तो उसमें जो संपूर्ण सृष्टि में क्रिया हो रही है वो हमारा प्राणमय कोष हो गया।